ओम शांति। बाबा के घर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी बाबा के प्यारे घर में पहुंचे हैं। इस नुमाज शाम की पवित्र वेला में आज हमारे बीच में बाबा ने तराशा हुआ एक कोहिनूर। आदरणीय शुभांगी दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी पुनः जोरदार करतल ध्वनि से दीदी जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। मीत भाषी व्यक्तित्व की धनी, मधुर वाणी से संपन्न, कुशल संचालन करने वाली आप एक प्रखर वक्ता हैं। आपने कई जगह राजयोग शिविर एवं तनाव मुक्ति शिविरों का संचालन करते हुए कई भाई बहनों को बाबा से जुड़ाकर उनका जीवन दिव्य गुणों से श्रृंगारित किया है। कहते हैं इतना करो संघर्ष कि चंदन बन जाए, इतना तपो कि तप करके हम कुंदन बन जाए, और इतना मुस्कुराओ कि कांटे भरे जीवन में भी मधुबन बन जाए, कांटे भरे जीवन में भी हम मधुबन बन जाए। ऐसे ही अपनी तपस्या से, श्रेष्ठ वाणी से, दिव्य गुणों से सबकी सेवा करने वाली आदरणीय शुभांगी दीदी जी हम सबको अपने वरदानी बोल से संपन्न कराएंगे। और आप सभी भी अपनी बुद्धि रूपी झोली को खोल करके बैठेंगे और अपने आप को बाबा के ज्ञान से, वरदानों से भरपूर करेंगे। हम दीदी जी के वरदानी बोल सुनेंगे, उसके पहले कुछ जरूरी सूचनाएं आप सबके लिए हैं।
ओम शांति, ओम शांति। हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जी, तीन बार ओम शांति का महामंत्र हमको रोज याद कराती है। आप सभी ने देखा है, सुना है, जब भी दादी जी से मिलेंगे तो दादी जी तीन बार ओम शांति हमें बुलवाती है। क्यों तीन बार बुलवाती है? उसमें तीन बार में कौन सी स्मृति दिलाती है? पहली ओम शांति है, मैं कौन हूं, पहली स्मृति। दूसरी ओम शांति है, मैं किसकी हूं, मैं आत्मा किसकी संतान हूं। और तीसरी ओम शांति हमें स्मृति दिलाती है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूं, अर्थात मेरा लक्ष्य क्या है। तो ओम शांति के अर्थ स्वरूप सभी राजयोगी, राज ऋषि भाई बहनों को कल के प्रभु मिलन की बहुत बहुत पदम गुणा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पुनः आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हो, क्योंकि हम कितने भाग्यवान हैं कल हम किससे मिलने वाले हैं। यही खुशी है ना मन में कि हम किससे मिलने आए हैं। जब ये मिलन की चर्चा यदि हम करने बैठेंगे तो माउंट आबू आते तक कई भाई बहनों को बहुत सारी बातें आई होगी, कितने कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। हो सकता है किसी की टिकट बनी होगी और किसी की नहीं बनी होगी। जिसकी
बनी थी वो नहीं आ पाए और जिसकी नहीं बनी थी वो समय पर पहुंच भी गए, है ना, वंडरफुल यात्रा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर, चाहे कहीं से भी आए हैं, देश विदेश के, कोई भी भाषा के हो, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते में एक विशेष पुष्प बनकर हमें गुलदस्ते में रख दिया। तो आप सभी अपने को ऐसा ही अनुभव करते हो ना, कि मैं भगवान का विशेष पुष्प हो। विशेष पुष्प है ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। बाबा ने कहा था कि एक दिन आएगा कि सारे संसार में मेरे बच्चे richest in the world गाए जाएंगे। तो आज वो समय आ गया ना, सारी दुनिया में एक सेकंड में कितनी हलचल हो गई, करोड़पति एक सेकंड में, सभी तरफ कितनी हलचल। कई ऐसे भी समाचार सुनने में आ रहे हैं कि जिन्होंने करोड़ों रुपया जमा करके रखा था, बोरी की बोरी वो सारे जला रहे हैं, तो कोई सुसाइड कर रहे हैं, और हम भगवान के बच्चे, कोई चिंता है? यहां बैठे किसी को टेंशन तो नहीं हो रही है? कोई टेंशन नहीं। तो richest in the world हम बाबा के बच्चे कितने निरसंकल्प होकर के प्रभु मिलन की उस स्वर्णिम सुखद कल की वेला का इंतजार कर रहे हैं कि कल प्यारे बाप दादा आएंगे और मुझ आत्मा की झोली भरपूर वरदानों से भरेंगे, है ना? कई बार ये देखा है, हम जब एक बार कहीं प्रोग्राम में गए थे, तो जब भी प्रोग्राम होता है तो अपने पुराने बाबा के बच्चे नए नए भाई बहनों को आमंत्रित करते हैं ताकि सभी आत्माओं को बाबा का संदेश मिले। तो पुराने भाई बहनों ने सभी नए भाई बहनों को विशेष बुलाया था जहां पर हम गए थे, तो बड़े डर डर के वो सभा में आकर बैठे। क्यों उनके मन में डर था? कई भाई बहनों को कह रहे थे कि हमने तो गुरु नाम ले लिया है, नामदान ले लिया है, तो फिर हम दूसरा ज्ञान कैसे सुन सकते? देखो, उनके मन में अपने गुरु के प्रति या जो भी बातों को वो फॉलो अप कर रहे हैं उसके अंदर कितनी श्रद्धा। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम जो सुना रहे हैं ये सुन सकते हैं या नहीं। तो हमारी भी वही स्थिति है कि हम जो कर रहे हैं वो इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इतना उच्च कोटि का ज्ञान है कि इस ज्ञान के आगे और कोई ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, यही सबका संकल्प है ना? और यही संकल्प से कई बार हमने देखा होगा कि कई बातें आती है, लेकिन बाबा के उस स्नेह और मदद के आगे, वरदान के आगे वो बात कैसे छू मंतर हो जाती है, शिव मंत्र के सामने पता ही नहीं चलता। इसीलिए कई बार जब भी हमारे सीनियर भाई बहनें जब क्लास कराते हैं या कहीं भी हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं सीनियर से महारथी से, तो हमारा सभी का कौन सा संकल्प होता है, दीदी या दादी जी से हम अपना अनुभव सुनना चाहेंगे, यही कहते हैं ना। क्योंकि ज्ञान तो हमने सुना, ज्ञान को हमने समझ भी लिया, लेकिन अभी जरूरत है प्रैक्टिकल की। और ये प्रैक्टिकल जब हमारा धारणा मूर्त में दिखेगा, तब किसी को ज्ञान सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए एक बार बाबा ने कहा था कि यदि तेज बारिश हो रही हो और कहीं दूर एक जगह कहीं शेड हो, तो क्या वो शेड हमें बुलाता है? बुलाता है नहीं ना। तो क्या करते हैं हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद शेड के नीचे भाग कर पहुंच जाते हैं। तो बाबा भी हमें यही कहता है, बच्चे आप सभी ने अपनी स्वर्ग की टिकट बुक कर ली है, बुक कर ली है ना सभी ने। जैसे हम कहीं यात्रा पर जाना होता है तो पहले से ही एडवांस टिकट बुकिंग करते हैं ना, रिजर्वेशन पहले से कर लेते। क्यों कर लेते? हाँ, ताकि समय पर हमें यात्रा में परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन आप सभी ने देखा होगा, आज टिकट बुक हम करते हैं तो टिकट में पैसे की तैयारी तो हमें करनी होती है, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें चाहिए होता है अपना, क्या देना पड़ता है टिकट के लिए भी, आईडी प्रूफ है। तो ऐसे बाबा कहता है कि ये स्वर्ग के टिकट जो हम बुक करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली नंबर की टिकट होती है जिसमें यात्रा करने में कोई भी प्रकार की असुविधा या कष्ट नहीं होता, बड़ी आरामदायक यात्रा होती है वो। तो वो टिकट कौन सी होती है? एसी की है ना? तो यात्रा में भी कई दर्जे है ना टिकट्स के, एसी, फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड यानी जनरल। तो इस यात्रा के अंदर भी ये हमारी कौन सी यात्रा है? रूहानी यात्रा है। तो इस रूहानी यात्रा के अंदर एसी की टिकट, एयर कंडीशन की टिकट कौन सी आत्माएं प्राप्त कर सकती है? तो बाबा ने कहा कि एयर कंडीशन के टिकट उन्हें मिलेगी जो बाबा की हर कंडीशन में पास होगा। जिसको आज बाबा ने कहा कि बच्चे आपको श्रीमत मिली है बाबा की, तो हमें बाबा की कौन सी श्रीमत मिली है? आज बाबा की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हें डर रखना है, और कोई बात का डर हो ना हो, लेकिन बाप का डर जरूर रखना है। और श्रीमत है कि तुम्हें क्या करना है, अपना चार्ट का अटेंशन देना है। तो एयर कंडीशन की टिकट कौन से बच्चे प्राप्त कर सकते हैं? जो बाबा की हर कंडीशन की जो श्रीमत है उसको फॉलोअप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इस एक्सेप्ट करने में कई बातें आती हैं, जो आज बाबा ने याद दिलाया कि श्रीमत पर चलना है, ये तो सबका लक्ष्य है। बाप समान बनना है, ये सबका लक्ष्य है। लेकिन किंतु परंतु उसमें आ ही जाता है। तो आज बाबा ने क्या कहा कि जो समझदार बच्चे हैं वो क्यों, क्या, कैसे, ये शब्द उनके पास आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। हो सकते समस्याएं तो आएगी, कारण तो कई बनेंगे, बातें तो कई आएगी, लेकिन बातों में भी यदि बाप याद है तो बात समाप्त हो सकती है ना। पहाड़ जितनी बात हो लेकिन बाप की स्मृति है तो पहाड़ भी राई तो क्या रुई बन सकता है। लेकिन कौन से बच्चों के लिए, जो हर बात की श्रीमत की जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करता है। तो हमने देखा है कई बार जब हम ज्ञान मार्ग में सबसे पहले आए, याद करो बाबा ने कहा था, याद करो वो अपना पहला दिन जब हम बाबा के बच्चे बने, वो पहला दिन जिस दिन हम बाबा के घर आए थे, परमात्मा का संदेश मुझे मिला था, पहला लेसन हमने सुना था। तो जैसे ही बाबा का परिचय मिला उस समय से हमारी दौड़ कितनी फास्ट थी ना, कोई बातें दिखाई देती थी, सुनाई दी, सोचने में आया नहीं, श्रीमत का इतना नशा, इतना निश्चय हमें था कि जो भी बातें हमारे साथ हुई स्टार्टिंग में उसका हमने कभी विचार भी नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में चलते चलते 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष होने लगे, उसके बाद धीरे धीरे बातें सुनाई भी देने लगी, दिखाई भी देने लगी और दिमाग में भी आने लगी। ऐसा क्यों? कई बार कई भाई बहने हमें कहते हैं, दीदी जब हम नए नए थे तब हमारा बहुत अच्छा योग लगता था, बहुत अच्छा अनुभव होते थे बाबा की याद में, लेकिन अभी वैसा योग नहीं लगता, ऐसा क्यों? तो क्या जवाब है इसका, क्या जवाब दे सकते हम ऐसे भाई बहनों को? यस, है ना, यही कहेंगे ना कि वो जो नशा, वो जो निश्चय उस समय हमें था वो अभी क्यों कम हो गया? क्योंकि कई बातों के चिंतन में हम आने लगे। तो आज बाबा ने यही कहा कि समझदार जो बच्चे हैं वो क्यों, क्या के प्रश्न में कभी नहीं आएंगे। चाहे बातें कैसी भी हो लेकिन शिव बाबा की स्मृति है, निश्चय है, तो नशा हमारा कभी भी कम हो ही नहीं सकता। इसीलिए यही कहेंगे, तुम कोई बात की चिंता मत कर, तू कोई बात की चिंता मत कर, ये जीवन कोहिनूर से भी कम नहीं। हर बात आती है जाती है, हर बात मौसम अदली बदली होता रहता है, लेकिन कोई बात की तू चिंता मत कर, हर वक्त बदली होता रहता है। इस पर एक बात मुझे याद आती है। एक बार एक गुरु सत्संग करा रहे थे, नए नए शिष्य सत्संग में बैठे थे, तो एक शिष्य ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी आप इतना सुंदर ज्ञान देते हो, सब समझ में तो आता है, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं होता, ऐसी क्या बात है? तो गुरुजी तो समझ गए थे। गुरुजी ने कहा, अच्छा पहले जो मैं कह रहा हूं आप वो काम किए। तो क्या काम बताया? एक कहीं कोने पर आश्रम में एक बहुत सुंदर स्वादिष्ट चीज का एक घड़ा भर के रखा था। तो एक शिष्य को कहा कि आप उस कोने पर जो घड़ा रखा हुआ है उस जगह से वो ले आइए। और बीच में जो सारे शिष्य बैठे थे उनके बीच में आप रख दीजिए। वो उठा और वो घड़ा लेकर के आया और वो सभी शिष्यों के बीच में रख दिया। फिर गुरुजी ने आदेश दिया कि अभी सभी, बहुत सुंदर लिक्विड जैसी चीज थी वो, स्वादिष्ट, तो गुरुजी ने कहा कि सभी शिष्य अपनी जगह से उठकर आएंगे और एक एक चूल्हा उसका लेकर के अपने मुंह में रखेंगे। तो सभी ने वो मटके में हाथ डाला और अपने हाथ से जैसे अंजलि लेते हैं वैसे मुंह में भरा पानी। फिर गुरुजी ने कहा कि अभी मुंह में उसको खाली पकड़ के रखो। तो सभी ने मुंह में पानी भरा, वो स्वादिष्ट पानी, और पकड़ के रखा। फिर गुरुजी ने कहा कि अभी आप उसको थूक दो। थूक दिया। फिर गुरुजी ने कहा कि अभी आप बताइए इसका टेस्ट कैसा था। तो शिष्यों ने क्या कहा होगा? बहुत अच्छा था। केवल आदेश मिला था कि मुंह में पकड़ के रखो, अंदर उसको लेना नहीं है, है ना? ये आदेश था। और फिर कहा कि उसको थूक दो, फेंक दो। तो एक शिष्य ने कहा, गुरुजी जब हमने उसको अंदर लिया ही नहीं तो हम आपको इसका टेस्ट कैसे बता सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा, आपको आपके ही प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रसंग में ही समाया हुआ था ना, कि जब तक कितनी भी अच्छी बात या कितना भी अच्छा ज्ञान हम सुन ले, लेकिन जब तक वो अंदर नहीं जाएगा, मीन्स आचरण में नहीं आएगा तब तक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रवचन के पहाड़ से भी आचरण का तिनका बहुत बड़ा है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, कथनी करनी एक समान तभी बनेगा विश्व महान। तो हम कितना बड़ा चैलेंज सारी दुनिया के सामने किया हुआ है ना, कि हमें कौन मिला है, कैसे कहूं मुझे कौन है मिला, ये चैलेंज किया है ना कि हमें परमात्मा प्राप्ति हुई है, हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो ये चैलेंज जब हमने किया है तो माया भी तो हमें चैलेंज देगी ना, कि देखते हैं आपने ये जो चैलेंज किया है तो इस चैलेंज को आप कितना निभा सकते हो, कितना चैलेंज में खरे उतरते हो। तो कई बातें आएगी। अगर अभी हम आप सभी का अनुभव अगर पूछने बैठेंगे तो दिन और रात पूरी हो जाएगी कि कितने बाबा के बच्चों ने अनेक अनुभव किए हैं परमात्मा प्राप्ति के, कि कितनी बातें आई, लेकिन बाबा की प्राप्ति के आगे, बाबा की शक्ति के आगे परिस्थिति को झुकना पड़ा, है ना। तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन परिस्थिति को हम स्वस्थिति से ठीक कर सकते। हमारी स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति चाहे कैसे भी हो वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी, नहीं बिगाड़ पाएगी। तो आज ये कितना बड़ा सुंदर संगठन है, स्वप्न में भी हमने कभी सोचा था कि हमें भगवान मिलेंगे, जो सोचा नहीं था आज उसी क्षण का हम अनुभव करने यहाँ आबू की धरनी पर प्यारे बाबा की गोदी में पहुंच गए हैं। तो चाहे परिस्थिति कैसे भी हो लेकिन स्वस्थिति या स्वमान हमें ऊंच पद, ऊंच प्राप्ति करा देता है। हमारा सारा इतिहास साक्षी है कि जितने भी महारथी दिग्गज होकर गए हैं उनको 24 घंटे से ज्यादा समय मिला था, जो उन्होंने इतना सुंदर कार्य करके दिखाया, या परिस्थितियां अनुकूल थी तब उन्होंने कारनामे करके दिखाए, नहीं ना। कई बातें उनके सामने भी आई लेकिन उतने ही समय में उन्होंने अपने उच्च स्वमान से परिस्थिति पर जीत प्राप्त की। लेकिन कई बार क्या होता है कि परिस्थिति आती है तो हम थोड़ा सा हलचल में आ जाते और कमजोर हो जाते, बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आप मेरी मदद करो, आप मुझे शक्ति दो, आप मुझ पर कृपा करो। लेकिन बाबा कहता है कृपा आशीर्वाद हमें मांगना है नहीं, बाबा ये मेरी समस्या दूर करो, ये हम प्रार्थना करने लग जाते हैं या कहने लग जाते हैं। लेकिन क्या एक विद्यार्थी जब भी परीक्षा एग्जाम उनकी होती है तो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि भगवान आप ऐसी कृपा करो कि मेरी ये एग्जाम खत्म हो जाए, मुझे देनी नहीं पड़े और मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। जब एग्जाम देता है स्टूडेंट तभी अगली क्लास में पहुंचता है ना, आगे का दर्जा उसे प्राप्त होता है। आसमान में भी जब बहुत सारे चारों तरफ से काले बादल पूरे घेर कर आ जाते हैं, बिजली एकदम चमकने लगती है, गड़गड़ाहट की आवाज आंधी तूफान के साथ होती है, तो सभी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये काले बादल छट जाए? नहीं ना। कितने खुश होते हैं कि अभी ये काले बादल छाए हैं, अभी ये गड़गड़ाहट की आवाज जो आ रही है इसके तुरंत बाद वर्षा होने वाली है, और जितनी तेज वर्षा होती है उतनी सभी को खुशी होती है कि सारे मनुष्य प्राणी पशु पक्षी के लिए जो जल आवश्यक है उसकी पूर्ति अभी चारों ओर हो जाएगी, है ना? बल्कि वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं ना कि वर्षा हो जाए। ठीक इसी तरह से एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ी एक जगह रेस होने वाली थी। उस रेस में कंडीशन थी कि तांबे का बहुत बड़ा पोल था, पिलर था, उसके ऊपर से चढ़ के ऊपर जाना था। तो रेस मेंढक होते हैं ना, उनके बीच लगे थे। तो तय समय में अनाउंसमेंट हुई, 1 2 3 स्टार्ट, कहते ही रेस शुरू हुई। तो सभी मेंढक वो तांबे के पोल से ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन तांबे का होने के कारण फिसलन हो रही थी और एक एक ऐसे भदाभद नीचे गिरते जा रहे थे। उन मेंढकों में एक मेंढक भी ऐसा था कि वो भी उस पोल से ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा था। तो सभी गिरने वालों को देख करके सभी ने उसको भी बोलना शुरू कर दिया कि अरे अरे इतने सारे तो चढ़ रहे लेकिन एक भी सक्सेस नहीं हो रहा है इस रेस में, तो आप क्या सक्सेस होंगे, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मत चढ़ो ऊपर, ये फालतू है, आप थक जाओगे, इस प्रयास को छोड़ दो, आप विनर नहीं बनोगे, आप पास नहीं होंगे। फिर भी वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और इतनी फिसलन वाले पोल पर भी चढ़ते हुए एक बार वो विजयी बन ही गया। तो जैसे ही वो विजयी बना, सफलता उसको मिली, तो सभी ने ताली बजाई, वो फर्स्ट बना, लेकिन सभी ने कहा कि आपको सब इतना आपका मनोबल गिरा रहे थे, मत चढ़ो मत चढ़ो, फिर भी आपने ये रेस कैसे जीत ली? तो क्या जवाब था? वो मेंढक बहरा था, उसने कुछ ये निगेटिव बातें सुनी ही नहीं। सुना? तो हमें सक्सेस लेनी है, आगे बढ़ना है, परिस्थिति को पार करना है तो ये जितनी भी बाह्य बातें हैं जो आती है उसमें क्या बनना पड़ेगा? कान बन। ये निगेटिव बातें अंदर जाएगी नहीं तो हमारा स्वमान, हमारा जो लक्ष्य है वो कभी भी कम नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बालक जो ट्रेन की यात्रा कर रहा था तो यात्रा करते करते ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि वो अंदर नहीं आ पा रहा था, तो ट्रेन में दरवाजे में ही लटक कर वो यात्रा कर रहा था। लेकिन एक भले व्यक्ति को उस पर दया आई तो उसने सोचा इतनी भीड़ में ये दरवाजे को लटक रहा है तो इसको मैं अंदर ले लेता हूँ। लेकिन हाथ भी पकड़ने की उसकी जगह नहीं थी उस व्यक्ति के लिए, तो उसने उसके दोनों कानों को पकड़ करके उसको अंदर खींचा ट्रेन के अंदर ताकि ये गिर नहीं जाए। लेकिन हुआ क्या, सारे शरीर का भार कानों पर आने के कारण एक समय आगे ऐसे आया कि उसके कान से सुनना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आप कभी सुन नहीं पाओगे। तो क्या बालक ने अपने आप को कमजोर समझ करके पीछे हट गया होगा? नहीं। तो क्या किया होगा उस बालक ने? वो बालक कौन था? तो आप सभी को पता है वो बालक ने अपनी उस कमजोरी को भी, अपने उस निगेटिविटी को भी अपनी शक्ति बना दिया, अपनी स्ट्रेंथ बना दिया और उस कमजोरी को भी शक्ति के रूप में सारी दुनिया के आगे ऐसे प्रदर्शित किया कि सारी दुनिया के लिए जो गुंगे, बहरे, जो भी कमजोर आजकल इन सभी महान विशेष आत्माओं के लिए एक सुंदर शब्द अभी यूज हो रहा है, दिव्यांग आत्माएं, तो उनके लिए बहुत सुंदर ब्रेल लिपि का उन्होंने आविष्कार किया। ऐसे ही एक बालक पिता के औजार से खेलते खेलते आंख गवा बैठा। एक आंख में औजार लगने के कारण एक आंख तो खराब हो गई लेकिन उसको भी लापरवाही के कारण दूसरे भी आंख खो बैठा। लेकिन उस बालक ने भी अपने अंदर निगेटिविटी नहीं आने दी और उस कमजोरी को भी शक्ति के रूप में कैसे प्रदर्शित किया उसको भी आप सभी को पता है कि वो बालक कौन बना? बहुत बड़ा वैज्ञानिक थॉमस एडिसन बना, जिसने बहुत बड़ा आविष्कार बल्ब का किया। तो कौन सी चर्चा हम कर रहे हैं? बातें तो कई आएगी, परिस्थितियां कई आएगी, लेकिन यदि हमारी स्वस्थिति पावरफुल है, हम स्वमान में है, बाबा का दिया हुआ जो वरदान हमें याद है कि बच्चे तुम कौन हो? विजयी आत्माएं। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि एयर कंडीशन की टिकट कौन सी आत्माओं को मिलेगी? जो बाबा की हर कंडीशन की जो श्रीमत है उसको एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। और ये फॉलो करना मुझे आ गया तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जैसे हम प्लेन की यात्रा करते हैं तो जब ऊपर उड़ते हैं तो ऊपर उड़ते समय जब हम नीचे देखते हैं तो नीचे कैसे दिखाई देता है? बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है ना। इतना बड़ा बड़ा खेत भी माचिस की डिब्बी जैसा दिखाई देता है ना। तो बाबा भी यही कहता है कि स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। तो बाबा की याद में असंभव बात भी संभव हो जाती है। तो ऐसे असंभव को संभव बनाने वाले हम सभी यहाँ विजयी आत्माएं बैठी है ना, सफलता मूरत आत्माएं बैठी है ना, जिनको बाबा ने विजयी भव ये वरदान दिया है। तो सभी विजयी आत्माएं है ना, क्योंकि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो वर्तमान की चाहे कलयुगी बातें उसके आगे कितनी भी आ जाए लेकिन मुझे वो हिला सकती है? हिला सकती है? नहीं, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है, चाहे राजनीति की हलचल, धर्म की हलचल, परिवार में हलचल, जो भी हलचल हो रही है, इसके इस हलचल का बाबा ने हमें पहले से ही ज्ञान दे दिया है ना कि बच्चे आगे चलकर कैसा समय आएगा। तो जिन बच्चों को एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये यदि इन एडवांस पता हो तो क्या वो बच्चा फेल हो सकता? फेल हो सकता? नहीं ना। लेकिन उस स्टूडेंट्स की एग्जाम में और हमारी एग्जाम में क्या फर्क है? वो बच्चे भी एग्जाम देते हैं और हम भी बहुत बड़ा इम्तिहान पास करने के लिए आए हैं। सभी स्टूडेंट्स हैं ना हम, ईश्वरीय विद्यार्थी, गॉडली स्टूडेंट है। दोनों के स्टडी में कौन सा फर्क है? वहां जब एग्जाम होती है तो उन्हें दिन का पता होता है, कौन से विषय का पेपर आज होने वाला है ये पता होता है, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का पेपर है वो टाइम टेबल उनके पास होता है। लेकिन उन्हें क्या पता नहीं होता? हाँ, कौन से क्वेश्चन आएंगे ये पता नहीं होता है ना। और यदि कहीं आपने देखा होगा कि एग्जाम के पहले यदि पेपर लीक हो जाता है तो वो एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, फिर दूसरे दिन वो होती है। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पता नहीं होते हैं, टाइमिंग पता होता है, पूरा सिलेबस साल भर पढ़ लिया है तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन उसमें भी चॉइस होती है ना, 10 प्रश्नों में आपको 7 छुड़ाने हैं या 5 छुड़ाने हैं, तो उसमें ऑप्शन होता है, जो आता है उसको हम टिक कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में कौन सा फर्क है? यहां यहां क्वेश्चन पता है ना, सबको क्वेश्चन पता है ना, कौन से पेपर आने वाले हैं, ये बाबा ने पहले ही हमें बता दिया है। आठ प्रकार के पेपर आएंगे, है ना? इस पर भी काफी डिटेल है, आठ पेपर कौन से हैं। तो ये सब बातें बाबा ने हमें पहले ही बताई कि कैसे परिवार की तरफ से क्वेश्चन आएगा, कैसे परिस्थिति आएगी, कैसे शरीर के हिसाब किताब का भी एक पेपर होगा, रिश्तेदारों से भी पेपर होगा, लोक लाश कुर की मर्यादाओं की तरफ से भी पेपर आएगा, कई प्रकार के हिसाब किताब, तन मन धन समय संबंध संपर्क श्वास, कई प्रकार की बातें आएगी। उसमें बाबा ने ये भी बताया था कि इविल सोल का भी पेपर आएगा। आठ पेपर में ये भी एक पेपर है, कई भाई बहने इसके भी अनुभवी होंगे, ये भी एक हमारा हिसाब किताब होगा, हो सकता है। बाबा ने एक बार कहा था ऐसे भी परीक्षा आएगी, कई मुरलियों की स्टडी आपने की होगी, तो बाबा ने कहा कि कई ऐसी आत्माएं आएगी जो कहेगी आज हमारा बहुत अच्छा योग लगा, हम वतन में गए थे, हमारे में ममा आई, हमारे में बाबा आए, हमने ये देखा, हमने वो देखा। तो बाबा ने कहा था बच्चे समझ जाओ, ये भी माया है, ये भी एक पेपर है। तो ऐसे समय पर बाबा ने एक बात याद दिलाई थी कि ऐसी बातें जब होती हैं तो आप एक बात अवश्य याद रखना, अंतर और मंत्र, अंतर और मंत्र, ये दो बातों से आप समझ सकेंगे कि सच्चाई क्या है। तो ये आठ पेपर आएंगे, लेकिन उसका हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पता है, लेकिन टाइम नहीं बताया है, टाइमिंग पता नहीं। इसीलिए बाबा क्या कहता है, बच्चे सदा एवर रेडी, सदा अलर्ट, सदा एक्टिव, अभी समय अनुसार हमें सुस्त नहीं लेकिन चुस्त बनना होगा, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। इस हलचल में चारों ओर हलचल हो रही है, लेकिन हम बाबा के बच्चे चारों ओर हलचल होते हुए भी अचल है। सभी अचल है ना, कोई हलचल तो नहीं हो रही, क्या होगा, कैसे होगा, है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ जो कारोबार है वो बिल्कुल यथावत व्यवस्थित चल रहा है, तो कितनी बड़ी कमाल है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे परम शिक्षक ने पहले से ही हमें बता दिए थे, समय नहीं बताया था, है ना? तो अचानक जो भी पेपर होता है तो उसको हम अचानक नहीं कह सकते ना, ये सब तय है। इसीलिए बाबा ने हमें ये पाठ पक्का करा दिया, कौन सा? अचानक और एवर रेडी। जो एवर रेडी होंगे वो कोई भी पेपर में, कोई भी परिस्थिति में फेल नहीं होंगे। फेल हो सकते? नहीं हो सकते। कंफ्यूज हो सकते? नहीं हो सकते। ऐसे समय में कोई को भी संशय है, शक है? नहीं। ये परमात्म ज्ञान, परमात्म नियोजन, इतना नियोजित, इतना व्यवस्थित कारोबार है कि कोई भी प्रकार की परेशानी बाबा के बच्चों को नहीं आती है। ये कितनी बड़ी प्यारे बाबा की कमाल है। ये कितनी बड़ी समस्या आई, लेकिन ये समस्या भी हल हो गई। हल हो गई ना, कोई प्रकार की समस्या नहीं। तो कहने का भाव यही है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और ये तैयारी हम तब कर सकते हैं जब हमारा, या इस तैयारी में वो बच्चे पास हो सकते हैं जिनका शुरू से अंत तक एक ही स्वमान का अभ्यास पक्का है। अगर तैयारी में थोड़ी सी भी कमी होगी तो हम अंत में फेल हो जाएंगे, है ना? इसीलिए आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को यही बात याद दिलाई कि कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही कौन बन सकते हैं? स्वराज्य अधिकारी, है ना? तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी आप सभी भाई बहनों को प्रभु मिलन की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन हो, स्वागत है आप सभी का। ओम शांति। प्यारे बाबा को याद करेंगे।
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नए नाहद में ठहरना सदा नदिया सबे ते रहना है
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है गुलिस्तान खिले होठों को मुस्कान मिले जग को जीवन दान मिले आए गम की ना हवाएं देते रहो दुआएं नहीं अब गुण को मन में धरना है
प्यारे बाबा यही कहना है
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है कथनी करनी एक बने कर्म तुम्हारे नेक बने देख के और अनेक बने देख के और अनेक बने तुमको योगी बन के रहना पावन पावन से बनना जैसे निर्मल सा झरता झरना है
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है
पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है
करते चलो सबको प्यार देते चलो सत्कार
तुम्हें तारों से आगे निकलना है
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना